الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 3 ہماری ریفرنس بک ہے، اسی میں سے ہم پڑھتے ہیں تفسیر کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، ایک ہی آیت ابھی تلاوت کی ہے 27، تو مجموعہ آیات جو ہیں وہ 27 سے لے کر کے 32، یہ زیر بحث تھا پچھلے کچھ ہفتوں سے. تو اسی کے اندر ہم نے ترجمہ تو ان آیات کا یعنی 27 سے لے کے 32 تک کا پڑھ لیا تھا، پھر پچھلی کلاس میں خلاصہ تفسیر بھی ہم نے صفحہ نمبر 109 تک پڑھ لیا تھا، اور آپ کے سامنے شاید وہ ڈسپلیڈ بھی ہوگا اسکرین کے اوپر. تو یہ جو آیت تھی کہ من اجل ذلك کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اسی سبب سے کہ یہ جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ہم نے جو ہے نا وہ اسی سلسلے کو روکنے کے لیے، روک تھام کے لیے، کہ بھئی اسی طرح ہر بندہ اپنے غصے میں آ کر کے یا کسی خواہش نفس کے تحت آ کر کے اگلے بندے کو قتل نہ کیا کرے. تو ہم نے ان کے اوپر لکھ دیا یہ فرضیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر، کہ جس نے کسی ایک نفس کو بھی قتل کیا بغیر کسی جینوئن ریزن کے، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے بدلے کے یا فساد کے بدلے کے، ٹھیک ہے، بغیر فساد فی الارض، ٹھیک ہے، بغیر نفس او فساد فی الارض، تو با جو ہے اس کا عطف جو ہے وہ نا وہ فساد کے اوپر بھی آ رہا ہے، بغیر فساد فی الارض، یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کوئی فساد مچایا تھا زمین کے اندر، ایسے ہی اس کو قتل کر دیا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، تو جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. تو اس کے تحت جو ہے وہ خلاصہ تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ کسی دوسرے شخص کے جو ناحق مقتول ہوا ہو یا بدون کسی شر و فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو، خواہ مخواہ قتل کر ڈالے، نہ تو اس نے کسی دوسرے کو قتل کیا تھا، نہ اس نے ڈاکے والے جیسے فساد پھیلائے تھے، ڈاکہ ڈالنا، ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر ہی قتل کر دیا اس کو، تو گویا تو اس کو بعض اعتبار سے ایسا گناہ ہوگا گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا. بعض اعتبار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ اینگل سے دیکھا جائے یا کچھ وجہ سے، کچھ وجوہات سے اس کو ایسا ہی گناہ ہوگا کہ جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، یعنی بظاہر تو اس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا نا خالی، تو اب سارے انسانوں کو اس نے کیسے قتل کر دیا؟ تو اصل میں تو اس نے قتل نہیں کیا سارے انسانوں کو، لیکن اس کو گناہ ایسا ملے گا جیسے کہ سارے انسانوں کو قتل کرنے والے کو ملتا. تو اب اس کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں سمجھایا، یہ بریکٹس میں ہے خلاصہ تفسیر، ٹھیک ہے. तो फरमाते हैं कि वो बाज एतबार ये है, बाज एतबार यानी कुछ वजूहात उसकी ये हैं कि उस गुनाह पर जुर्रत की, यानी गुनाह पर जुर्रत की एक इंसान को कत्ल करना, खुदाए ताला की नाफरमानी की कि अल्लाह ताला ने मना किया है इंसान को ना हक कत्ल करना करने से, खुदाए ताला इससे नाराज हुए। ठीक है, जब अल्लाह की नाफरमानी करी तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं। दुनिया में मुस्तहिक क़िसास हुआ, क्योंकि शरीयत के अंदर क़िसास जो है ना वो यही है कि किसी बंदे को आपने मार दिया बगैर हक के, तो अब जो है ना वो आपको मारा जाएगा या आपको मक़तूल के वुरसा के हवाले कर दिया जाएगा, वो मारें या छोड़ने आपको। ठीक है, इसको क़िसास का हुक्म कहा जाता है। तो दुनिया में मुस्तहिक क़िसास हुआ, आखिरत में मुस्तहिक दोज़ख हुआ। ठीक है, क्योंकि कत्ल के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। अब वो हदीस तो मुझे अभी अभी समझ याद आई कि वो भी कहीं लिख लेते आपको सुनाने के लिए, कि यानी एक नहीं, वो हदीस नहीं बल्कि कुरान मजीद क्या है ना कि ये भी होगा उसके साथ, ये भी होगा उसके साथ, ये भी होगा उसके साथ, ये भी हो सकता, एक नहीं चार चार उसके अंदर है, ये सजा भी होगी, ये सजा भी होगी, ये सजा भी होगी, ये सजा भी होगी। तो आखिरत में मुस्तहिक दोजख हुआ। ये उमूर एक के और हजार के कत्ल करने में मुश्तरक है। ठीक है, यानी एक को कत्ल किया हो या 100 को कत्ल किया हो या 1,000 को कत्ल किया हो, अल्लाह ताला की नाराजगी हर एक में है। मुस्तहिक कसास हर सूरत में है, मुस्तहिक दोजख हर सूरत में है। गुनाह पर जुर्रत करना, भाई गुनाह छोटा हो या बड़ा, हर सूरत में है। माशाल्लाह, इन्होंने हाफिज साहब ने गालबन ये आयत भी नकल कर दी, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नमु खालिदन फीहा वगज़िब अल्लाहु वलअनहु वअअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा। ठीक है ना, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जिसने किसी जानबूझ करके मोमिन को कत्ल किया, बस उसकी जगह जहन्नुम है, बस बात खत्म हो गई, जहन्नुम में जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया आगे, खालिदन फिया, हमेशा रहे के लिए वो जहन्नुम में रहेगा। वह गजब अल्लाहु अलैहि, और अल्लाह का गजब होगा उसके ऊपर। वह लानहु, और अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाएगा उसके ऊपर, अल्लाह की लानत का ये मतलब होता है ना। और फिर उसके बाद वह अद्दलहु अजाबन अजीमा, और उसके ऊपर एक अजीम अजाब का उसके साथ वादा है। ठीक है, तो एक लफ्ज से भी उसकी सजा का पता चल जाता है, जहन्नुम में जाना। नहीं, ये ऐसे होता है ना कि आप किसी बात की अहमियत को, इतनी अहम है आपके लिए, इतनी अहमियत है आपके लिए कि आप एक लफ्ज में उसको समेटने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज, चौथा लफ्ज, पांचवा लफ्ज। ठीक है, कत्ल कर देना कितना ज्यादा शदीद है अल्लाह ताला के नजदीक। यहां पर मोमिन के कत्ल की बात है, और ये जो आयत है हाबिल काबिल के सिलसिले वाली, ये इंसान के कत्ल। ठीक है, तो चाहे वो मोमिन ना भी हो, काफिर ही हो, ठीक है, लेकिन वो उस उन शरायत पे पूरा नहीं उतरता था कि उसको कत्ल करना जायज हो, तो उसके साथ भी ऐसा ही मामला है। ठीक है, अब कितना अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली बोले या क्या बोले, कितना कत्ल जो है वो आम हो चुका, कि ये हाल आज पहुंच चुका है कि कहा जा सकता है कि कातिल को पता नहीं होता कि वो कत्ल कर क्यों रहा है, और मकतूल को पता नहीं होता कि उसको क्यों कत्ल किया गया। यानी बगैर किसी कॉज के भी ना, एकदम रैंडम किलिंग। ठीक है, अमेरिका बहादुर जो है वो तो वहां की तो खबरें भी आती हैं ज्यादा ही ना। ठीक है, मैस किलिंग्स, मैस किलिंग्स, मैस किलिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि चार या चार से ज्यादा बंदे एक साथ जो है ना वो खड़का दिया आपने, तो मैस किलिंग्स जो है वो रोजाना के हिसाब से तकरीबन वहां पर होती हैं, कभी किसी स्कूल में हो रही हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में हो रही हैं, कभी किसी जो है वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हो रही हैं, तो कभी जो है वो सड़क के ऊपर भी हो रही है। यानी एब्सोल्युटली नो रीजन, बंदा जाता है बस मारना शुरू कर देता है। ठीक है, और यही मामला जो है वो हमारे मुल्कों शहरों के अंदर भी उस लेवल पर नहीं भी सही, लेकिन अच्छे खासे लेवल पर मौजूद है ये चीज भी। तो सजा जो है ना वो फिर एक को करे या सबको करे। गो शिद्दतो अशदियत का तफावत हो, शिद्दत और अशदियत। ठीक है, यानी वो उसकी सुपरलेटिव फॉर्म हो गई शिद्दत की, अशदियत, उसमें फर्क हो जाहिर है कि एक को मारेगा तो अल्लाह ताला की जो गजब की शिद्दत है वो, यानी किस तरह से समझाएं, 1000 वॉट्स हमारे अपने छोटे से उसके अंदर, ठीक है, 1000 वॉट्स की, तो दो को कत्ल करेगा तो 2000 वॉट्स हो जाएगी, तीन को कत्ल करेगा तो 3000 वॉट्स हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से बस शिद्दत और अशदियत का फर्क है, लेकिन 1000 वॉट क्या क्या कम है, 1000 वॉट्स भी वो भी कम तो नहीं है ना। तो गो अशिद्दत व अशदियत का तफावत हो, यानी फर्क हो, और ये दो कैदें इसलिए लगाएं कि किसास में कत्ल करना जायज है, ठीक है, और कत्ल करना भी किसको जायज है कि जिसके ऊपर अदालत में ये प्रूव हो चुका हो कि वाकई उसने कत्ल किया था और अदालत यानी काजी ने फैसला दिया हो, ठीक है। काजी कौन होता है कि जिसके पीछे गवर्नमेंट होती है, ठीक है, यानी एक निजाम होता है, चाहे वो जिरगे वाला काजी हो, ठीक है, जहां पे जिरगा सिस्टम है और वहां पे गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं है क्योंकि वो आजाद इलाके कहलाते हैं, तो वहां जिरगा सिस्टम जो है वो काजी की अदालत कहलाएगी, और जहां पर बाकायदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट है आजकल के एतबार से तो वो गवर्नमेंट कहलाएगी इसमें, कि उसने फैसला किया कि इसने वाकई कत्ल किया है, तो फिर उस सूरत में कसास में कत्ल करना जायज है। यानी ऐसा नहीं कि वो बंदा जो है ना वो कहे कि नहीं, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है तो जाके वो कत्ल करके आ जाए उसको, ऐसे नहीं। इसी तरह दूसरे असबाब जवाज कत्ल से भी, जिसमें कत्ल तरीक जो आगे मजकूर है, कत्ल तरीक डाका रास्ते को काट करके, है ना, बंदों को रोक करके जो है वो उनके ऊपर डाका डालना, तो ये भी असबाब जवाज कत्ल में है। और हरबे कफ कुफरे हरबी, जिसका जिक्र अहकाम जिहाद में आ चुका है, यानी हरबी काफिर जिसको कहते हैं, ऐसा काफिर के जिसके साथ एक्टिवली आपकी लड़ाई हो रही है, पीस एग्रीमेंट उस काफिर के साथ नहीं हुआ हुआ है बल्कि यू आर एंगेज इन वॉर, ठीक है, उसको हरबी काफिर कहा जाता है। तो इसके भी अहकाम हैं जो कि अहकाम जिहाद में आ चुके हैं, ये सब दाखिल हैं, इनको कत्ल करना जायज बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है, ठीक है। तो अब ये सूरतें फिर आगे आएंगी इंशाल्लाह, ये उसको अगली सूरत अगली आयात की तफसील के अंदर उतने भी काफी लिखा भी है। तो ये भी और ये भी लिख दिया था, यानी बनी इसराइल के ऊपर ये भी बात फर्ज कर दी थी कि जैसा नाहक कत्ल करना गुनाह अजीम है, इसी तरह किसी को कत्ले गैर वाजिब से बचा लेना उसमें सवाब भी ऐसा ही अजीम है, कि जो शख्स किसी शख्स को बचा लेवे तो उसका सवाब, उसको ऐसा सवाब मिलेगा कि गोया उसने तमाम आदमियों को बचा लिया, ठीक है। और गैर वाजिब की कैद क्यों लगाई, तो कुरान मजीद में तो गैर वाजिब की कैद जो है वो कत्ल में लगाई थी, अहया के अंदर नहीं लगाई थी, लेकिन चूंकि बात वही चल रही है तो तफसीर में फिर गैर वाजिब की कैद अहया में भी लगाई, ठीक है, क्योंकि एक तो पीछे वाली बात ही कंटिन्यू हो रही है, दूसरे के शरीयत के दूसरे जो जो माखज हैं तो उनसे पता चलता है कि गैर वाजिब की कैद इसलिए लगाई कि जिस शख्स का कत्ल शरअन वाजिब हो उसकी इमदाद या सिफारिश हराम है, ठीक है। जैसे किसी हरबी काफिर को जो है ना वो आगे से अटैक कर रहा है और ये उसको बचा रहा है, ठीक है, कि भाई कोई मुसलमान जाकर उसको कत्ल ना करे, तो भाई उस मुसलमान की जान की हिफाजत ये ज्यादा अहम है, बजाय इसके कि आप जो है वो हरबी काफिर को जो है ना वो बचाने की कोशिश करना शुरू कर दें। उसी तरीके से किसी ने कत्ल किया किसी को और काजी ने उसके कत्ल का फैसला कर दिया, अब उसको जो है वो सिफारिश के जरिए से सोर्स लगा करके या रिश्वत दे करके उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हराम है। और इस मजमून अहया के लिखने से भी तशदीद कत्ल की जाहिर हो गई कि जब अहया ऐसा महमूद है तो जरूर कत्ल मजमूम होगा, इसलिए इसका तरतुब व तसब्बुब भी बवास्ता अतफ के मिन अजले जालिक पर सही हो गया, ठीक है। तो मिन अजले जालिक ना ऐसे ही मिन अजले जालिक, तो इसके बाद जो है ना फिर इसका अतफ बनता है व वमन अह्याहा, तो वाव जो है हर्फ अतफ है जो कि पिछले हुक्म को आगे वाव के बाद वाले जुमले के ऊपर कंटिन्यू कर देता है, ठीक है, तो इसको अतफ कहते हैं। तो उसका तरतुब तो सब वमन अह्याहा के ऊपर भी साबित हो गया अतफ की वजह से। जब भी अरबी ग्रामर जब तक अच्छी तरीके से ना आती हो तो कुरान को समझना खुद से जो है ना वो मुमकिन नहीं होता, फिर तफसीर की ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि तफसीर फिर अरबी ग्रामर को जानने वाले आलम ने करी हुई होती है। वो और बनी इसराइल के पास इस मजमून के लिख देने के बाद हमारे बहुत से पैगंबर भी दलायल वाज़ेहा नबूवत के लेकर आए और वक्तन फवक्तन इस मजमून की ताकीद करते रहे, मगर फिर इस ताकीद और एहतमाम के बाद भी बहुतेरे इनमें से दुनिया में ज्यादती करने वाले ही रहे, ठीक है, और उन पर कुछ असर ना हुआ, हत्ता के बाद में खुद इन अंबिया ही को कत्ल कर दिया। जैसे मशहूर जो है वो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हैं कि इन दोनों को जो है ना फिर इन्होंने कत्ल किया या कत्ल करवाया, और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश करी, वो तो अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया तो बच गए, वरना तो इनके इन्होंने तो कत्ल करवा के छोड़ना था, ठीक है, रोमन्स को जो है वो इत्तला दे दी कि यहाँ पर जो है ना वो छुपे हुए हैं, जाओ जाकर उनको कत्ल कर दो, ठीक है। तो बनी इसराइल में भी वही हुआ कि अक्सरियत ने नहीं मान करके दी। जब अल्लाह ताला ने ना सूरह अनाम के अंदर जो जुमे के दर्स में चल रही है यही फरमाया ना कि वह इन तो अक्सर अमन फिर अर्दे युदल्लू कान सभी लल्ला, अगर तुम अक्सरियत की बात मान करके चलोगे ना तो फिर वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे, क्योंकि अक्सरियत जो होती है ना वो नबियों की बात नहीं मानती है, और अल्लाह को ये बात पता है नहीं मानते ये लोग अक्सर। तो सुम्मा इन कसीरम मिनहुम बादा दालिका फिल अर्दी लमुसरफून। तो ये हो गई खुलासा तफसीर, आगे मारिफ व मसाइल हम आज पढ़ने शुरू कर रहे हैं, किस्सा हाबील व काबील। खुलासा तफसीर के बारे में किसी को सवाल हो तो चैट विंडो पे लिख करके आप पूछिएगा। इन आयात में तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब को या पूरी उम्मत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सही सही सुना दीजिए। वतलू अलैहिम नबा अबनई आदमा बिल हक, ठीक है, तो आप पढ़िए उनके ऊपर। किन के ऊपर पढ़िए? सिर्फ यहूदियों को बिठा के पढ़ने का हुक्म नहीं है ना, बल्कि पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो मुसलमान ही सुनेंगे, और फिर उसके बाद यहूदियों तक भी ये बात पहुंचा दीजिए कि बनी आदम के साथ क्या मामला हुआ। कुरान मजीद पर नजर करने वाले जानते हैं कि कुरान करीम कोई किस्सा कहानी या तारीख की किताब नहीं है, ना तो हिस्ट्री बुक है और ना जो है ना वो स्टोरी बुक है, जिसका मकसद किसी वाकये को अव्वल से आखिर तक बयान करना हो। भाई स्टोरी बुक में तो ऐसे ही होता है ना, स्टोरी पूरी बयान होती है, या ये कि फिर अगली किस्त आती है फिर उसके अंदर बाकी स्टोरी बयान होती है, ठीक है, तो मकसद ही स्टोरी को पूरा बयान करना होता है स्टोरी बुक का, ठीक है, कुरान में ऐसा नहीं है। लेकिन वाकयात माजिया और गुज़श्ता अकवाम की सरगज़िश्त अपने दामन में बहुत सी इबरतें और नसीहतें रखती है, वही तारीख की असली रूह है। नहीं, तारीख का मकसद जो है ना वो यही है, इबरत और नसीहत पकड़ना, इबरत पकड़ना, नसीहत पकड़ना। और इनमें बहुत से हालात वाकयात ऐसे भी होते हैं जिन पर मुख्तलिफ अहकाम शरईया की बुनियाद होती है, ठीक है। सूरह अनआम की तफसीर में आजकल हम यही वाली आयात पढ़ रहे हैं ना कि तम्मत कलिमत रब्बिका सिदकन व अदला, कि आपके रब के कलिमात जो हैं वो सच्चे हैं और बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, ठीक है, मुतदल हैं। तो कलिमात रब क्या है, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने उसकी तफसीर में यही लिखा कि कलिमातुल्लाह जो है वो दो किस्म के हैं, एक जो है वो वाकयात, ठीक है, उसके साथ ऐसा हुआ, हबील के साथ ऐसा हुआ, काबिल के साथ ऐसा हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ऐसा हुआ, लूत अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकई, ठीक है, और फिर दूसरे कलिमात क्या है, अहकामात, ठीक है, कि भाई ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, और इन दोनों का आपस में रब क्या, कि भाई अहकामात इलाही को मानने वालों के साथ माजी में क्या हुआ,
और ना मानने वालों के साथ माजी में क्या हुआ। ठीक है, तो ये है कलिमातुल्लाह, और ये कलिमातुल्लाह बिल्कुल सच्चे हैं और बिल्कुल मोतदल हैं, यानी एक्सट्रीम्स नहीं है इसके अंदर, उसमें जो है वो इम्प्रैक्टिकलिटीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये है अहकामात शरिया की बुनियाद भी होती है इन वाकयात के ऊपर, इन बहुत सारे मुख्तलिफ अहकाम शरिया की। इन्हीं फवायद के पेश नज़र कुरान करीम का असलूब हर जगह ये है कि मौका ब मौका कोई वाकया बयान करता है, और अक्सर पूरा वाकया भी एक जगह बयान नहीं करता, बल्कि उसके जितने हिस्से से इस जगह कोई मकसद मुतअल्लिक होता है उसका वही टुकड़ा यहाँ बयान कर दिया जाता है। ठीक है, तो पूरा वाकया शुरू से आखिर तक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही कहा जा सकता है, लेकिन वो भी सारी तफसील नहीं है, बल्कि बहुत, हमने तो पढ़ी है ना अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूसुफ, तो हम अक्सर उसमें कह देते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके ना, फिर वो अगला सीन आ जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी तफसीलात को स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है, अगला सीन आ जाता है। ठीक है, जमाने जाहिलियत के अंदर वो रिमोट कंट्रोल बहुत इस्तेमाल किया था ना, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो वो चीजें याद रह जाती हैं। फिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का यह किस्सा भी इसी असलूब हकीम पर नकल किया जा रहा है। इसमें मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए बहुत सी इबरतें और मवाइज हैं, और इसके जिमन में बहुत से अहकाम शरिया की तरफ इशारा किया गया है। अब पहले अल्फाज कुरान की तशरीह और उसके तहत में असल किस्सा देखिए, इसके बाद उसके मुतालिक अहकाम व मसाइल का बयान होगा, क्योंकि हजरत मारिफ व मसाइल की यही तरतीब रखी है, पहले किस्सा बयान करते हैं, फिर उसके ऊपर जो अहकाम शरिया मुतालिक होते हैं उससे वो बयान करते हैं। कहते हैं कि इससे पहली आयात में बनी इसराइल को हुक्म जिहाद और इसमें उनकी कम हिम्मती और बुजदिली का जिक्र था। तो हम पीछे की क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि वो अमालका की तरफ उनको हुक्म हुआ, जाओ भाई तुम्हारे लिए हमने वो शहर लिख दिया है, बस चले तो जाओ, लेकिन उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। उतने बुजदिल थे वो, बड़े लोग हैं, उनकी साइज बड़ा है, और ये है वो है, डर के मारे नहीं नहीं जाना हमने। ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब इस किस्से में उसके बिलमुकाबिल कत्ले नाहक की बुराई और उसकी तबाहकारी का बयान करके कौम को इस एतदाल पर लाना मकसूद है कि जिस तरह हक की हिमायत और बातिल को मिटाने में कत्लो कताल से दम चुराना गलती है, इसी तरह नाहक कत्लो कताल पर इकदाम दीनो दुनिया की तबाही है। ठीक है, लेकिन कैसे बैलेंस अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद के अंदर मेंटेन करते हैं कि पीछे जो है ना वो कताल का हुक्म था कि जाओ अमालका के साथ कताल करो, मारो उनको, निकालो उनको शहर से बाहर। ठीक है, और उसके फौरन बाद क्या कि हम शरीफ पप्पू किस्म के लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, टाइम होता है जरा हेवी ट्रैफिक का, दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर फोन से कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही जी, अब आ रही है इनको आवाज। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ में उस कैटेगरी में अल्लाह का शुक्र है आते हैं, कि मानना वानना नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से ना हम हैरान होते हैं कि कैसे जो है ना वो लोग एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, लेकिन वाकई जिसको हाथ उठाने की आदत हो जाती है ना, तो अब उससे जो है ना वो रहा नहीं जाता, तो जहां उसको गुस्सा आया, जहां उसकी जो है ना वो खिलाफ मर्जी के खिलाफ मामला हुआ, उसका हाथ उठता है। ठीक है, अब हाथ के अंदर अगर कुछ नहीं है तो फिर सिर्फ हाथ ही उठता है, और अगर हाथ के अंदर छुरी है तो छुरी हाथ के साथ उठेगी। ठीक है, और अगर अंदर बंदूक है तो बंदूक साथ उठेगी। ठीक है, तो ये आदत जो होती है ना इंसान की, हाथ उठाने वाली आदत, बड़ी खतरनाक आदत होती है। ठीक है, तो क्योंकि उससे काबू होती है ना, फिर उससे तबीयत वही ठुकाई तो लगेगी कि नब्ज जो है वो कुछ काबू में आया हो। ठीक है, तो
आवाज आ रही है उसको, बस कंफर्म कर दें एक दफा, तो हम आगे चलते हैं। तो ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस ये आज ये कह रहा था कि जब इस किस्म की आदतें पड़ जाती हैं ना, तो फिर अगले बंदे को मारना जो है ना वो कोई बड़ा बड़ा मसला नहीं रहता। ठीक है, वो बंदा कत्ल भी कर देता है। और अनफॉर्चुनेटली हमने खुद, अल्लाह का शुक्र है, देखने का भी मौका नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, लेकिन जो वाकयात सुनने में आते थे, स्पेशली कराची के अंदर जब कत्ल जो है वो आम हो गया था। आजकल तो आम का कत्ल चल रहा है ना, ठीक है, खाने वाले आम का कत्ल चल रहा है, लेकिन जब जो है ना वो इंसान का कत्ल आम करना, ये कोई अगेन गॉन, नो वॉइस, नहीं अब तो वॉइस आनी चाहिए जी। आ रही है, वॉज ब्रेकिंग। अब तो 5G चल रहा है फोन के ऊपर। ठीक है, सुन अल्लाह रहम करे। तो इसी वजह से जहां पर कत्ल का मामला आता है ना कि भाई कत्ल करना है, जैसे सोल्जर्स को, पुलिस वालों को, ठीक है, तो आइडियली स्पीकिंग जो फोर्सेस के लोग होते हैं उनकी ऐसी ट्रेनिंग की जाती है, आइडियली स्पीकिंग मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग की जाती है कि क्या हो गया भाई, नो वॉइस एट ऑल नाउ, नहीं आ रही आवाज, इट इज फाइन फॉर अस, किसी को नहीं आ रही, किसी को आ रही है। क्या करें। हाँ, बहरहाल हम कह रहे थे कि भाई उनकी ऐसी ट्रेनिंग की जा रही होती है कि वो जो फोर्सेस के सोल्जर्स होते हैं ना, वो हुक्म उनके लिए सबसे अहम चीज बन जाए। ठीक है ना, हुक्म सबसे अहम चीज बन जाए कि जब हुक्म मिलेगा तब मारेंगे, और जब हुक्म ना मारने का मिलेगा तो रुक जाएंगे। ऐसा कंट्रोल, ये जो इतनी रिगोरस किस्म की ट्रेनिंग होती है ना सोल्जर्स की, ठीक है ना, वो रिगोरस ट्रेनिंग जो है वो हम समझते हैं ताकि उनके ऊपर जो है ना वो जब कोई मुश्किल हालात आए तो वो थक ना जाएं कहीं, और जो है ना वो रफ एंड टफ बन जाएं, यानी घास खाने के भी काबिल हो जाएं, और मुर्गी को जो है वो देखा था एक जमाने में हमने, वो कि जी मुर्गी का जो है ना वो मुंह, यानी दांत से जो है वो मुर्गी का मुंह काट के फेंक दिया, और पूरे मुर्गी का जो है ना वो खून कट कट करके, जैसे कि आप किसी जग में से कोई शरबत पी रहे हैं, तो मुर्गी का पूरा खून जो है ना वो पी गए, ये ट्रेनिंग के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, तो बस मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही हो रहा है, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग, तो हम समझते हैं कि जी मुश्किल हालात में जो है ना वो सर्वाइवल उनको सिखाया जा रहा होता है। नहीं, सिर्फ ये नहीं होता कि मुश्किल हालात में वो सर्वाइव कैसे करेंगे, नो, दिस इज नॉट जस्ट द ओनली ट्रेनिंग दैट दे आर गिवन, बल्कि ट्रेनिंग का एक लाजमी तरीन जुज ये होता है कि जब आपको बंदूक पकड़ाई जा रही है, जब आपको अगले बंदे को मारने का तरीका सिखलाया जा रहा है, तो अब जो है ना वो आपके लिए अपने आप को रोकना भी इंतहाई अहम है, अपने आप को रोकना भी इंतहाई अहम, यानी आपको अपने जज्बात के ऊपर काबू करना, अपने जज्बात के ऊपर काबू करना इंतहाई जरूरी है। कि भाई ये नहीं कि मेरे पास तो बंदूक है
अब जिसके ऊपर मुझे गुस्सा है मैंने उसको मार दिया क्योंकि मुझे तो मारने की आदत पड़ गई है, नहीं ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। किसी एक बंदे को आपने गलत मारा तो आपको कोर्ट मार्शल किया जाएगा, आपको जो है वो सजा मिलेगी। वाई? बिकॉज ऑर्डर, ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऊपर से ऑर्डर मिला है तब मारना है, वरना नहीं मारना, ठीक है। तो ये आज की मिलिट्रीज जो है ना वो इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं, जो प्रॉपर अच्छी मिलिट्रीज होती हैं, वरना जो जो जंगली किस्म की फोर्सेज होती हैं जिन्होंने जाकर के खाली जो है ना वो फसाद मचाना होता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉपर तो जाके मारना है, जब हुक्म मिला नहीं मारने का तो नहीं मारना है, वरना तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा कोर्ट मार्शल किया जाएगा कि ये सारी की सारी सजाएं जो है ना तुम्हारे ऊपर वाजिब हो जाएंगी। तो वही हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जिस तरह कत्ल की हिमायत और बातिल को, यानी कौम को इस एतदाल पर लाना मकसूद है कि जिस तरह हक की हिमायत और बातिल को मिटाने में कत्ल कताल से दम चुराना गलती है, उसी तरह ना हक कत्ल व कताल पर इकदाम दीन और दुनिया की तबाही, ठीक है। क्या लिखा है उन्होंने, कोई सवाल लिखा है कि कैन यू मेंशन रिगार्डिंग हाउ जेंटल पेरेंटिंग इज लीडिंग पेरेंट्स टू नॉट स्ट्रिक्टली फिक्सिंग देयर किड्स व्हेन दे गेट यूज टू हिटिंग देयर पीयर्स। जेंटल पेरेंटिंग इज लीडिंग पेरेंट्स टू नॉट स्ट्रिक्टली फिक्सिंग देयर किड्स व्हेन दे गेट यूज टू हिटिंग देयर पीयर्स, ठीक है। पीयर्स जेंटल पेरेंटिंग जो है ना ये कहाँ से मिला है, ये यानी दे इवेंचुअली मे बिकम मर्डरर्स, बिल्कुल सही है। जिनको मारने की आदत हो जाती है वो आज 6 साल का बच्चा जो है वो अगले बंदे को टिका रहा है, ठीक है ना। जब ये 16 साल का होगा और फिर उसके बाद कुछ और ताकत शाकत आ जाएगी तो पता नहीं वो छुरी से स्टाब करेगा, ठीक है, छुरी से स्टाब करेगा, फिर आप क्या करेंगे अपने बच्चे का? फिर उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी या खुद ही जो है वो भाग जाएगा किसी को मार करके, ठीक है। तो ये जेंटल पेरेंटिंग जो है ना ये यानी कहाँ से सीखी है आपने, ठीक है। ये भाई आप उनसे सीखे ना जिनके पास अकल और शऊर है, जिनके पास इल्म है, ठीक है। जाहिलों से जेंटल पेरेंटिंग सीखेंगे तो फिर यही होगा, ये हाँ मेरा पप्पू जो है वो तो किसी को मार दे वो तो बेचारा होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा पप्पू ही तो है ना, बस इस वजह से उसने तो किसी को मार भी दिया किसी को टिका भी दिया तो कोई मसला नहीं है, बच्चा है आखिर को, बड़ा होकर खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो किसी को कत्ल कर दिया जा करके तो फिर वो खुद ही कैसे ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद ठीक किया जाएगा उसको फिर दूसरे तरीके से, अल्लाह ताला ठीक करेंगे या दुनिया का कोई सिस्टम उसको ठीक करेगा। तो भाई जुहला से इल्म हासिल करेंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने जहां पर बच्चों के साथ नरमी का दर्स दिया है वहीं पर सख्ती का भी दर्स दिया है, वहीं पर सख्ती का भी दर्स दिया, हत्ता के कोड़ा कोड़ा होता है ना टिकाने के लिए पिटाई करने के लिए, हदीस मुबारका है और ये कोई घड़ी हुई हदीस नहीं है कि ऐसा कोड़ा जो है वो लटका करके रखो घर के अंदर कि जो कि नजर आ रहा हो कि बच्चों अगर तुमने कुछ उल्टी हरकत करी ना, इस किस्म की हरकत करी, ये तुम्हें कोड़े से हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे दीन का हिस्सा है, सिर्फ वो नहीं है कि जी बस लाड प्यार करते रहो और उसको मारने पीटने के ऊपर जो है ना वो आपने छोड़ दिया कि जो भी चाहे करे, ठीक है। तो इल्म तो बहुत कुछ सीखने का है ना, हम तो अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि जी हमें पता है और हमने चीजें इधर से पढ़ ली उधर से पढ़ ली तो हमें सब समझ में आ गया, इतना लंबा मैसेज तो यार बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। फॉलोइंग द कमांडिंग ऑफिसर, अच्छा चले आगे चलें कि पहली आयत में इब्ने आदम का लफ्ज मजकूर है। यूं तो हर इंसान आदमी और आदम की औलाद है, हर एक को इब्ने आदम कहा जा सकता है, लेकिन जमहूर उलमाए तफसीर के नजदीक इस जगह इब्ने आदम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो सलबी और हकीकी बेटे मुराद हैं, यानी हाबील और काबील, इन दोनों का किस्सा बयान करने के लिए इरशाद हुआ, ठीक है। तरबियत औलाद बहुत वसी टॉपिक है, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है और हमने भी उस काम को मजीद समझाने की बहुत कोशिशें करी हैं, तो वो नोट्स की शक्ल में भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट के ऊपर, और रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में भी मौजूद है, हमारी वेबसाइट पर भी है, हजरत जी की वेबसाइट पर भी है। तो
सीखना चाहिए ना इन चीजों को, कि कहाँ पे आप पिटाई करना वाजिब है और कहाँ पे पिटाई ना करना वाजिब है। ठीक है, आगे फरमाते हैं, तारीखी रिवायात की नकल में एहतियात और सच्चाई वाजिब है। अभी तो ये वाजिब हो गई, तारीखी रिवायात की नकल में एहतियात और सच्चाई वाजिब है। तो फरमाया, वतलू अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक, यानी इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सही सही वाकये के मुताबिक सुना दीजिए। इसमें बिल हक के लफ्ज से तारीखी रिवायात की नकल में एक अहम उसूल की तलकीन फरमाई गई कि तारीखी रिवायात की नकल में बड़ी एहतियात लाजिम है। यानी एक लफ्ज बिल हक कह करके अल्लाह ताला ने ये उसूल हमें दे दिया, एहतियात करो, क्योंकि हक ही जायज है जिसमें ना कोई झूठ हो ना कोई तलबीस। तलबीस का मतलब होता है थोड़ा सच थोड़ा झूठ मिक्स करके आपने बयान कर दिया, ना कोई तलबीस और धोखा, क्योंकि तलबीस के जरिए से ही धोखा होता है पूरा। अगर आप झूठ बयान करें ना, अगले बंदे को फौरन पता चल जाता है कि ये झूठा है। लेकिन धोखा कब होता है उसको, जब आप थोड़ा सच और थोड़ा झूठ मिक्स करके बयान करें। अब उसको समझ में नहीं आएगा कि ये विच पार्ट ऑफ इट इज ट्रू एंड विच पार्ट ऑफ इट इज फॉल्स, या वो मोस्ट लाइकली कोई और होगा, सादा सा बंदा वो पूरे को सच समझ लेगा, ठीक है, और कोई जो है वो जरा स्केप्टिक किस्म का बंदा होगा वो पूरे को झूठ समझ लेगा, ठीक है। हालांकि ना पूरा झूठ था ना पूरा सच था, तो इसको तलबीस कहते हैं और इसी के जरिए से धोखा दिया जाता है। और ना असल वाकये में किसी किस्म की तब्दीली या कमी ज्यादती, ठीक है, तो वाकये की डिटेल्स में आप कमी ज्यादती नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई ये ऐसे हुआ था ये ऐसे हुआ था। हाँ, समझाने की खातिर या इबरत की खातिर आप अपने अल्फाज उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है ना, यानी एक्सप्लेन करने के लिए। बट एक्सप्लेनेशन डज नॉट मीन कि आप फैक्ट्स को जो है वो चेंज कर दें, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बार बार ये बात मुख्तलिफ मौजूआत में आ जाती है कि भाई अलग अलग बातें होती हैं, हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब इस मामले में ये दो अलग अलग बातें, एक है एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है, उसमें से हिदायत हासिल करना, उसमें से अपने लिए जो है वो यानी गाइडेंस हासिल करना, और एक होता है कि आप वाकये की यानी रियलिटी को चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है। यानी एक बंदा आया था, आप कह रहे हैं 10 बंदे आए थे, 1,000 बंदा आया था, आप कहते हैं कह रहे हैं नहीं 1,00,000 बंदा आया था, ठीक है, यानी आपको पता है कि 1,000 बंदा आया था। ये नहीं कि आपने किसी किताब में पढ़ा था कि 1,00,000 बंदा आया था तो आपने आगे बयान कर दिया कि हाँ भी उस किताब में एक अच्छी जगह किसी किताब में खरीदी उसमें 1,00,000 बंदे का लिखा हुआ था, नहीं, आपने पढ़ा ही 1,000 बंदा है, लेकिन सिचुएशन को जो है ना वो ज्यादा गर्माने के लिए 1,00,000 बंदा आया था बोल दिया आपने उठा करके, ठीक है। तो इसमें कौन सी एक्सप्लेनेशन हो रही है आपकी, आपने तो फैक्ट्स को बदल दिया गरमाइश की खातिर, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन अलग चीज होती है और फैक्ट्स को मोड़ना तड़ोड़ना ये अलग चीज होती है, उसकी इजाजत नहीं है। कुरान करीम ने सिर्फ इसी जगह नहीं बल्कि दूसरे मौके में भी इस उसूल पर कायम रहने की हिदायत दी है। जैसे एक जगह और इरशाद है कि इन हादा लहुल कससुल हक, कि ये जो है ना वो कसस है सच्चा। दूसरी जगह इरशाद है, नहनु नकुसु अलैका नबअहुम बिल हक, कि हम जो है वो किस्सा बयान करते हैं आप आपको ताकि यानी नबअहुम बिल हक, कि वो खबर देता है हक के साथ, ठीक है। तीसरी जगह इरशाद है, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम कौल अल हक, ये ईसा इब्न मरियम है और सच्चा कौल है ये, ठीक है। तो इन तमाम मौके में तारीखी वाकयात के साथ लफ्ज हक लाकर इस बात की अहमियत को वाज़े किया गया है कि नकल वाकयात में हक व सिद्क की रियायत लाजमी है। रिवायात व हिकायात की बिना पर जिस कदर मफासिद दुनिया में होते हैं, इन सब की बुनियाद आमतौर पर नकल वाकयात में बेएहतियाती होती है। जरा सा लफ्ज और उनवान बदल देने से वाकये की हकीकत मसख हो जाती है। पिछली अकवाम के मजाहिब व शराए इसी बेएहतियाती की राह से जाया हो गए और उनकी मजहबी किताबें चंद बेसनद व बेतहकीक कहानियों का मजमुआ बन करके रह गई। जैसे वो औज बिन एनक वाला इतना लंबा था कि वो समंदर में जो है ना वो घुटनों तक उसका समंदर आता था, और जो है वो बादलों से पानी पिया करता था स्ट्रॉ लगा करके, स्ट्रॉ से पानी का पीता होगा बादलों से, और मछली पकड़ता था समंदर से और सूरज के करीब ले जा करके उसको तल लेता था और खा लेता था उसको। तो ये बाकायदा बनी इसराइल की किताबों के अंदर ये तमाशा मौजूद है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल झूठा। तो वही फरमा रहे हैं कि इस किस्म की है ना बेसनद और बेतहकी कहानियों का मजमुआ बन गई है तौरात इंजील के वाकयात। इसी के इसके अलावा इसी लफ्ज में कुरान करीम के मुखातबीन को इस तरफ भी रहनुमाई करना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी महज हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, किसी उस्ताद के सामने बैठे नहीं, ना किताब पढ़ना सीखा, ना जो है वो लिखना सीखा, और हजारों साल पहले के वाकयात बिल्कुल सच्चे और सही बयान फरमा रहे हैं, तो इसका सबब बजुज वही इलाही और नबुवत के और क्या हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सच्ची बात बिल्कुल एक्यूरेटली बयान करें ना, जैसे आपको सनद के साथ आप तक पहुंची है, सही रिवायात पहुंची है या जयीफ रिवायात भी हैं, तो ज़ईफ़ का भी जो होता है वो घड़ावा नहीं होता, ठीक है, ज़ईफ़ का मतलब घड़ावा नहीं होता, तो ज़ईफ़ रिवायात भी जो है वो फ़ज़ाइल के बाब में आगे बयान की के करते हैं, क्योंकि उसका सनद जो है नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है, ठीक है, लेकिन घड़ी हुई रिवायात वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के आप ने फरमाया नहीं, घड़ी हुई रिवायत नहीं बयान कर सकते, ठीक है। और इसी तरीके से बातचीत में भी ऐसी बात कि आप ने फरमाया, हाँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो कुछ और था, अगर आप उसमें से कोई अपने लिए हिदायत ले रहे हैं तो इस तरीके से बयान करें ना कि हमें उसमें से ये यानी हिदायत मिलती है, हमें उसमें से ये इशारा मिलता है। अब ये तफसीर इशारी की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ना वो तफसीर इशारी और जो है ना वो अपने लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेना, इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं भाई, वो एक अलग चीज है, और हर चीज में से अपने लिए हिदायत लेना, इबरत हासिल करना, ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि जो रिवायात हैं जैसी हैं उनको वैसे ही बयान करना है, आगे पीछे उसमें मिर्च मसाले नहीं लगाने, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसे लतीफे, जैसे हमारे मशायख कुछ लताइफ बयान करते हैं ना, लतीफे वो वाले लताइफ नहीं बल्कि जोक्स, ठीक है, अब वो जो जोक्स होते हैं ना वो सच्चे नहीं होते कि एक आदमी जो है वो वहां जा रहा था तो सामने उसको जो है वो ये नजर आया तो उसने ऐसे किया उसको ये, अब लोग हंस रहे हैं उसको सुन करके, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम का तो आला तरीन दर्जा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोक्स भी बयान किए ना तो उसमें भी सच्चाई होती थी, ठीक है ना, लेकिन हमारे मशायख जो हैं वो जोक्स बयान करते हैं जिनमें सच्चाई नहीं होती, तो अब उसकी क्या तौजीह है, वो कैसे बयान कर देते हैं झूठ लतीफे भाई, वो ऐसे करते हैं कि अगले बंदे को पक्का पता होता है कि ये सच नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हंसाना मकसूद है, इसमें कोई सच नहीं है, सुनने वाले को भी पता है ये वाली बात, ठीक है, कि ये भाई जोक सेशन चल रहा है बस इसके अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से ज्यादा इसकी गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन अगले बंदे को आप ये तासुर दे रहे हैं कि जो मैं आपको वाकया बयान करूं ये सच्चा वाकया है, हालांकि वो सच्चा वाकया नहीं है, तो ये धोखा देने में आएगा, ठीक है। अच्छा, महज का क्या, उम्मी महज का मतलब ये है कि यानी यानी इस तरह से बात की जाती है कि ही वॉज जस्ट अनलेटर्ड, ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, तो उर्दू जबान में अब हम आम तौर पर उम्मी महज यानी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मकसद उसका यही है कि महज एक उम्मीद है, ठीक है, पढ़ना लिखना यानी कि नहीं जानते थे, एक तो ये इसका मारूफ ट्रांसलेशन की यही बनती है उम्मी लफ्ज की। बाकी ये भी है कि हज़रत थानवी ने तुमने बयान किया कि उम्मी का मतलब ये भी होता है कि जो के जमाने के बुरे असरात से मुतासर ना हो, ठीक है, अनटेंटेड अंग्रेजी में जिसको कहेंगे ना, ठीक है, उसके लिए भी उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो वक्त जो है वो तो हो गया क्लास का, तो यहाँ पे हम आज की क्लास रोकते हैं, इसके अलावा इसी लफ्ज में ये प्रणाम इंशाल्लाह, एक बस ये एक लाइन रह गई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी महज हैं और हजारों साल की, हमने पढ़ लिया इस तमीद के बाद इन दोनों बेटों का वाकया कुरान करीम में ये बयान फरमाया है, तो ये इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसी और का कोई और सवाल हो भी, इतना लंबा तो बहुत मुश्किल है। बच्चियां आजकल प्रैंक्स खेलती हैं या झूठी कहानियां बताती हैं, तो क्या ये सब झूठ में आ जाएगा? भाई वही बात है ना कि आप अगले बंदे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है? तो प्रैंक्स जो है ना, इसका मानी जो है वो धोखा देने में आता है, ठीक है? और झूठी कहानियां भी इस मामले में कि भाई अगर आप अगले बंदे को ऐसे बयान कर रहे हैं कि वो आपकी बात को सच समझ रहा है, तो वो झूठी कहानी है, ये झूठ में आएगा, ठीक है? लेकिन इश्तियाक अहमद की नॉवेल है ना भाई, तो वो क्या सच्ची होती है? महमूद फारूक फरदाना की जो नॉवेल है वो क्या सच्ची होती है कि उसके अंदर महमूद ने ये कहा था और फरदाना ने ये कहा था और उनके अब्बा इंस्पेक्टर जमशेद ने ये कहा था? कोई भी सच नॉवेल सच नहीं होता उसके अंदर। उसी तरह से दीनी रसायल के अंदर बहुत सारी बच्चों की कहानियां होती हैं, वो सच्ची नहीं होती हैं, ठीक है? लेकिन पढ़ने वाले को पता होता है कि वो सच्ची कहानियां नहीं है, बस वो जो है वो बात समझाने के लिए जो है वो एक गढ़ी हुई कहानी है, ठीक है? लेकिन पढ़ने वाले को भी पता होता है, सुनाने वाले को भी पता होता है, और ये बात क्लियर भी कर देनी चाहिए अगर बच्चों को नहीं पता कि भाई ये चीजें सच्ची नहीं है, बस इसके अंदर से एक लेसन के लिए जो है वो इस तरह की कहानी बयान की गई है, ठीक है? तो बस ये बात हम कर रहे थे, बाकी जो धोखे वाली चीजें हैं वो तो हरगिज भी जायज नहीं। ठीक है, चलें यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। सलाम।